नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन का कार्यक्रम उड़ान और मैं लीना मेहंदले इस कार्यक्रम में ले आई हूं संस्कृत की पढ़ाई के लिए अगले 10 मिनट का समय। हमारा आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम अब आरंभ होता है। हम पढ़ेंगे दो मजेदार बातें। एक तो है CBSE की दूसरी पुस्तक अर्थात रुचिरा दूसरा खंड, उससे मैंने एक कविता चुनी है। आओ पहले उसी को देखते हैं। जब दिन निकलता है तो क्या क्या होता है, इसका वर्णन अब हम करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। बहुत सीधा अर्थ है, उदिते सूर्ये अर्थात सूर्य के उगने पर धरणी विहसति, धरती हंसती है, पक्षी कूजति पक्षी कूजन करता है, कमलम विकसति कमल खिलता है। और क्या क्या होता है जब सुबह हो जाती है तो नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, मंदिरों में ऊंची आवाज में ढक्का अर्थात ढोल ढोल नगाड़े घंटियां बजाई जाती हैं। सरिता सलीले सेलती नौका, और नदी के पानी में नौका चलनी आरंभ हो जाती है। नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, सरिता सलीले सेलति नौका। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, पेड़ पेड़ पर नए नए पत्ते दिखने लगते हैं। विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, और उनके अलग अलग रंग होते हैं, वो एक सुंदर चित्र की तरह दिखाई पड़ता है, वह एक सुंदर चित्र की तरह शोभायमान होता है। विभाति शोभित होता है, सुशोभित होता है। धेनुः प्रातर यच्छति दुग्धम, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। देखो कितना सीधा बनाया है, कितना सरल बनाया है। धेनुः अर्थात गाय प्रातः काल दूध देती है, और वो दूध कैसा होता है, शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्ध होता है। घोटक राजः क्षिप्रम धावति, धावन समये किमपि न खादति। घोटक अर्थात घोड़ा तेज तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है। पश्यत भल्लुक मिमम करालम, नृत्यति थथथई कुरु करतालम। अर्थात इस भालू को देखो, ये देखने में तो विकराल लगता है, लेकिन ये चूंकि मदारी के पास है तो नृत्यति नाच करता है। कैसे नाच करता है, थथथई और कुरु करतालम, तो अब तुम देख रहे हो तो तालियां बजाओ। उष्ट्रह तुंगह मंदम गच्छति, जो ऊंचा ऊंट है वह धीरे धीरे चलता है। उष्ट्रह तुंगह मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम वहति, और अपने पीठ पर बहुत बोझ उठा करके चलता है। हरिणोयम खादति नव घासम, यहाँ हरिण है जो नई घास को खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और कौतुक पूर्वक विलास पूर्वक सभी तरफ देखता है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, और घने जंगलों में वाघ गर्जना करता है और तभी ऊंची आवाज में सिंह भी दहाड़ता है। तो जैसे सुबह होती है ये सारी बातें होने लगती हैं। किसी समय दोपहर और संध्या की कविता का भी परिचय मैं कराऊंगी। तो हम चलेंगे दूसरी बात पर। मित्रों मैं बता दूं कि आज का हमारा 40वां एपिसोड है, अर्थात 9 महीने हमने पठामी संस्कृतम के सारे संभाषणों का, सारे पढ़ाई का आनंद लिया है, कुछ उससे सीखा है जो कि बहुत हंसते खेलते ढंग से सीखा था। कहीं से कोई अच्छी कविता उठा ली, उसका अर्थ सुन लिया, उसे समझ में आ गया। लेकिन जैसे हम लोग पाढ़े याद करते हैं तो वो एक नियमबद्ध तरीका होता है, तो कभी कभी पढ़ाई करने के लिए उस प्रकार का नियमबद्ध तरीका भी हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हंसो खेलो लेकिन नियमों का सदा हमें भान रहे, तो फिर वो नियम कठिन नहीं होते हैं। तो थोड़े से उन नियमों से परिचय करने का, संस्कृत व्याकरण को थोड़ा सा अधिक आनंद रूप में समझने का अब समय आ गया है। तो हम लोग हर पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा जो व्याकरण है, जो कि संस्कृत की भाषा के नियमों को बताता है, उसको भी हम समझते चलेंगे। तो क्रियाएं जो होती हैं, जैसे इसी कविता में हमने बहुत से क्रियाएं देखी, विहसती, कूजती, विकसती, सेलती, विभाती, यच्छति, धावती, खादती, नृत्यति, गच्छति, पश्यति, गर्जति, नर्दति। तो ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, और तुमने गौर किया होगा कि ये सारी की सारी क्रियाएं एक वचन और प्रथम पुरुष को दर्शाती हैं, और साथ साथ ये सारी क्रियाएं वर्तमान काल को भी दर्शाती हैं। तो क्रियाओं के रूप काल के अनुसार और वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है कि संस्कृत में क्रियाओं के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ, हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया, लेकिन संस्कृत में अहम गच्छामि ही कहेंगे। लड़का हो तब भी कहेगा अहम गच्छामि, लड़की हो तब भी कहेगी अहम गच्छामि। तो ये याद रखने वाली बात है कि लिंगों के अनुरूप संस्कृत में क्रियाएं नहीं बदलती, लेकिन वचन और काल के अनुरूप बदलती हैं। और क्रियाओं के रूप किस प्रकार बनते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से नियमबद्ध, सूत्रबद्ध किया गया है संस्कृत में। इसकी पढ़ाई जब हम करते हैं तो ये याद रखने से बहुत तुम्हें आसानी होगी कि क्रियाओं के जो बदले हुए रूप हैं उनको समझने के लिए संस्कृत में लकार का नियम है। तो आओ हम आज इस नियम को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। तो क्या है ये लकार का नियम, या इस प्रश्न को थोड़ा इस प्रकार से पूछो कि ये लकार है क्या चीज। तो संस्कृत में किसी भी क्रिया का रूप किस प्रकार बनेगा, इसको दर्शाने के लिए लकारों का सहारा लिया जाता है। तो पहले ये हम समझते हैं कि 10 लकार होते हैं जो कि काल को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो लकारों का वर्णन जो है, लकारों का जो विभाजन है, वह काल के अनुरूप है। अब 10 लकार हैं, तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने इन 10 लकारों को याद रखने के लिए 2 तरीके अपनाए थे। पहला तरीका तो ये था कि सीधे 10 लकारों को एक क्रम से पढ़ जाओ और याद रखो। कौन है ये 10 लकार? लट, लिट, लुट, लुट, लोट, ये हुए 5। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, लट, लिट, लुट, लुट और लोट, ये 5 हुए। और बाकी 5 लकार कौन से हैं? वह हैं लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लुंग। फिर से सुनो, लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लुंग। यहाँ पर तुमने गौर किया होगा कि लिंग लकार 2 बार आया है, क्योंकि लिंग लकार के 2 भेद हैं, एक को कहते हैं विधि लिंग और एक को कहते हैं आशीर्लिंग। तो 10 लकार को एक सिरे से रट करके रखा था मैंने, लट, लिट, लुट, लुट, लोट और लंग, लिंग, लिंग, लुंग, लुंग। लेकिन इनके जब रूप याद रखने पड़े तो मैंने इनका वर्गीकरण थोड़ा सा अलग कर दिया, जो कि सुविधा के अनुरूप था। तो सुविधा के लिए जो मैंने इनका वर्गीकरण किया वो इस प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल और सामान्य भूतकाल, जिनका हमें प्रयोग बार बार करना पड़ता है। तो इनके लकार जो हैं वो हैं लट, लुट, लंग। और इसके लिए मैंने संस्कृत की एक क्रिया ली, भव अर्थात होना। तो सामान्य वर्तमान काल हो गया भवति, इसको मैंने ऐसे याद किया था, लट भवति, लुट भविष्यति, लट भवति, लुट भविष्यति, लंग अभवम, लोट भव, लट भवति, लुट भविष्यति, लंग अभवम, लोट भव। तो इसको याद करना मेरे लिए आसान हो गया था कि लट लकार जो होगा उसका प्रथम पुरुष एकवचन का रूप भवति है, उसी प्रकार लृट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप भविष्यति है, और ये भविष्य काल को दिखाता है। तो लट भवति लृट भविष्यति लंग अभवम, अब अभवम मैंने जानबूझ करके अपनी सुविधा के लिए उत्तम पुरुष का शब्द रखा था ताकि वो लंग से थोड़ा सा तुकबंदी के साथ मिल जाए तो मुझे याद रखना सरल हो। तो लंग अभवम, लंग भूतकाल का रूप है, अभवम मैं थी, और लोट ये आज्ञा दिखाता है। तो लोट भव आज्ञा को याद रखने के लिए सबसे सरल है, जब मैं तुम्हें कोई आज्ञा देती हूँ उठो करो जाओ भागो, इसलिए लोट लकार को याद रखने के लिए मैंने मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप याद रखा भव अर्थात तुम होवो। मित्रों अगले लकारों के विषय में मैं अगली बार बताऊंगी क्योंकि आज हमारा समय समाप्त होता है। इन लकारों को हम विस्तार से और धीरे धीरे एक एक हमारे कार्यक्रम में पढ़ते चलेंगे। आज मैं आपसे अनुमति लेती हूँ, सबको नमस्कार। आप पढ़ते रहिए संस्कृत, सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए।